Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Gaura Nidai, Gaura Nidai, Gaura Nidai, Jaya Gaura Nidai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Itai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Itai Gaura Premanande. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम नित्य लीला प्रभराज की अनंत कोटि वैष्णव बृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की व्रज भूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त बृंद की ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्च और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान के गुणगान ठीक तरीका से जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है वैसा ही कर सकूं तो आप सब लोग ध्यान पूर्वक मेरे ऊपर थोड़ा सा कृपा दिखाइए हरे कृष्ण। आज का श्लोक
दिद्रोक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्तसंगामु भूतात्मभूतात् सुकृतः समे गति दिद्रोक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संघामुनय सुसाधवा चरं च लोका व्रतमौरणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति दिद्रोक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संघामुनय सुसाधवा चरं च लोका व्रतमौरणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति
ओ
సంగా మునయ సుసాధవ చరంచోకా వ్రతమావరణం వనే భూతాత్మభూత సుకృత సమే గతి విద్రోశ్యభోయ సంగా మునయ సుసాధవ మాతాజీ శబ్దార్థ అనువాద్ ఔర్ తాత్పర్య జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ జీకే ద్వారా జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి దిదృక్షవః భగవాన్ కో దేఖనే కే ఇచ్చుక్ యస్య జిన్కే పదం చరణ కమల్ సుమంగళం కళ్యాణప్రద్ విముక్త సంగా భౌతిక దశాంసే పూరి తరహ ముక్త్ మునయ మునిగణ్ సుసాధవ ఆధ్యాత్మిక చేతనా మే బడే చలే చరంతి అభ్యాస్ కర్తే హై అలోక వ్రతం బ్రహ్మచరి వానప్రస్థ యా సన్యాస కే వ్రత్ అవ్రణం బినా కిసీ త్రుటి కే వనే వన్ మే భూత ఆత్మా భూతా जो समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं सुखरुदा जो सबके मित्र हैं सह वे ही भगवान में मेरे गति ही गंतव्य अनुवाद जो सभी जीवों के समभाव से दिखते हैं जो सबके मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे ही विमुक्त तथा मुनिगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्व कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे गंतव्य हो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सब पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिनः, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। यह समझते हुए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के मित्र हैं, सुहृद सर्वभूतानम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे एक राष्ट्र तथा दूसरे में या एक जाति तथा दूसरी में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संगा शब्द से सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्मरण रूपस्वदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिण्यं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि जो गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के प्रति, वो भगवान के प्रति प्रार्थना करते करते हमें भी वेदों का सार बता रहे हैं। गजेंद्र को घड़ियाल पकड़ लिया, ये हम सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो तब वो अपना पूरा शक्ति लगा के घड़ियाल के वश से बाहर आने का प्रयास करता है, मगर नहीं हो पाता है। आखिर में वो उनको याद आ गया, उनको स्मरण आ गया कि भगवान के शरण में जाने से ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान का शरण में जाके भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं वो। ये प्रार्थनाओं में ये एक श्लोक है जो भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, और वेदों का सार वो स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों का लक्षण क्या होता है इस श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हमें कह रहे हैं कि यही है, अगर हम भगवान के शरण में जाना है तो भगवान के शुद्ध भक्त के शरण में जाना पहला काम है। तो एक्चुअली हर जीव आनंद के खोज में है, हर जीव आनंद के खोज में है। आनंद दो प्रकार का होता है, एक भौतिक सुख, दूसरा आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख का मतलब है अपने इंद्रिय का तृप्त करना, अपने इंद्रिय तृप्ति जो आसानी से मिल जाता है। और आध्यात्मिक सुख मतलब भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने से हमें प्रसन्नता मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हम जो भी कार्य करेंगे, ये है आध्यात्मिक सुख ढूंढने वालों का, ये उनका लक्ष्य। मगर ये आध्यात्मिक सुख उतना आसानी से नहीं मिलता, बहुत प्रयास करना पड़ता है। हाँ, हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण डेवलप होने के लिए भगवान का पूर्णतया हम सरेंडर होना जरूरी होता है। तो ये आसान है, और भगवान को भूल के सुख भोगो, भगवान को भूल जाने से अरे इतना कष्ट उठाने का जरूरत नहीं, और अपना इंद्रियों को तृप्त करो, बड़ा भोगो। तो भगवत गीता अध्याय 16 में बताया गया है दो प्रकार के मनुष्य होते हैं इस पूरा दुनिया में। द्वौ भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरे एवच, देव गुण का रहने वाला और दूसरा असुर गुण वाले। ये असुर गुण वालों का प्रवृत्ति यही होता है, दंभ अहंकार, और भगवान को भूल जाने वालों का यही लक्षण होता है, और वो भगवान को भूल के भोगने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और जो देवता का लक्षण है वो है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, ये पूरा लक्षण बताए हैं, जिसमें समान दृष्टि रखना, भय राहित होना, ये पूरा वर्णन है। तो ये जो जिनके अंदर ये गुण आ गया है, देवता का गुण, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। और जो दंभ अहंकार और मिथ्या प्रतिष्ठा, ये पूरा होता है क्रोध, वो अपने इंद्रियों को तुष्ट करके खुशी आनंद पाने का प्रयास करते हैं। तो जो अपना खुशी को अपने इंद्रिय भोग से पाना चाहते हैं, वो अपने ऊपर, अपने बैंक बैलेंस, अपना शक्ति, अपना पोजीशन, मैं कितना ऊंचा हूं, कितना बड़ा 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 पोजीशन में हूं, ये पूरा इसके ऊपर आधार करता है, और जन्म मृत्यु चक्कर में बंध जाता है। जन्म के ऊपर जन्म, जन्म करोड़ करोड़ जन्मों से वही काम करते रहता है, भगवान को भूल जाके काम करता है, सदा दुखी रहता है। और जो भगवान के शरण में चले जाता है, भगवान के प्रति पूर्णतया शरणागत होके भगवान को ही स्मरण करते हुए सदा आनंद में रहता है, क्योंकि जो आनंद है भगवान के पास है। और भगवान से ही मिलता है हमें। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सो सच्चिदानंद विग्रह जो है भगवान है, उनसे जब हम कांटेक्ट में आते हैं, उनसे जब हम जुड़ जाते हैं, उनसे जो आनंद है हमें मिलता है, हमें परम आनंद मिलता है। और इधर माया, माया कहती है अपना इंद्रिय तृप्ति करो और बड़ा आनंद में रहो, इंद्रिय तृप्ति करो और बंधन में पड़ जाओ, और माया से बार बार हम तीनों क्लेशों को अनुभव करो। तो जब आदमी इंद्रिय तृप्ति के मोह में आके फंस जाता है, वो फंस जाएगा ऐसे बड़े पिंजरे में, ऐसे बड़े चक्कर में फंस जाता है। ये चक्कर से बाहर आना बहुत 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 मुश्किल है। वो भगवान के प्रति पूर्णतया निष्ठा जब तक नहीं होता है, ये ऐसा ही घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, और सोचेगा कि बड़ा आनंद भोग रहा है। प्रभुपाद बार बार हमें ये कहानी सुनाते हैं। ये है, कोई खींचने का प्रयास कर रहा तो भी वो नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है, ये चक्कर में पड़े रहना ही बड़ा आनंद मिल रहा है, चक्कर से बाहर आओ, ये तो तुम्हें करोड़ करोड़ जन्मों से यही हो रहा है, तुम दुख अनुभव कर रहे हो, नहीं नहीं मुझे यही अच्छा लग रहा है। ये है माया के वश में, पूरा माया ऐसे पकड़ लिया है, या माया को ये इंसान ऐसे पकड़ के रखा है कि वो अटैचमेंट, उनका बंधन इतना हो जाता है कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। प्रभुपाद हमें बार बार, बहुत बार ये कहानी सुनाते हैं। ये इसमें बहुत गूढ़ अर्थ है, अगर हम इसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, जीवन में लेके आते हैं, हमारा जीवन बदल जाएगा। एक बार नारद मुनि भगवान से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस मृत्युलोक में लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं, अगर वैकुंठ लोक को हम लेके आते हैं उनको, वो उनका कष्ट पूरा खत्म हो जाएगा। भगवान बताते हैं, देखो ये माया जो है ना, मेरा ही माया है, माया इतना प्रभावशाली है और लोग माया के प्रति इतना आकर्षित हो गए हैं, वो वैकुंठ लोक आना नहीं चाहते हैं। नारद मुनि कहते ऐसा तो नहीं होगा, देखिए इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई कष्ट नहीं है, कोई भी आ जाएगा। तो भगवान बोलते हैं, नारद मुनि देखो तुम किसी को भी लेके आओ, वो अपने मर्जी से, अपने इच्छा से वैकुंठ लोक आना, ऐसा नहीं कि 10 लोगों को 1000 लोगों को तुम पकड़ के लेके आया, नहीं, जब तक उसके अंदर इच्छा पूर्णतया नहीं होता है कि वैकुंठ लोक में आना है, वो अपने इच्छे से नहीं आना चाहता है, उनको छोड़ दो, जो अपने इच्छे से आना चाहते हैं उनको पकड़ के लेके आओ, उनको लेके आओ, वो कोई तपस्या करने का जरूरत नहीं, कोई पुण्य कार्य करने का जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली वैकुंठ लोक में एंट्री, यस अग्रीड, उनको एंट्री स्वागत है। देखो याद रखो कि वो अपने इच्छा से आना चाहिए। महाराज मुनि कहते हैं, अरे वो तो मैं लेके आ जाता हूं, मैं लेके आऊंगा भगवान, मैं लेके आऊंगा। भगवान मुस्कुराते हैं, ऊपर से देखते हैं बढ़िया ब्राह्मण दिखाए पड़े, और वो नारद मुनि बहुत बढ़िया आपका दर्शन हो गया, मेरा तो सौभाग्य है, अरे कितना बढ़िया ब्राह्मण मिल गया है, चलो ब्राह्मण आपको और कोई भगवान का सेवा करने का जरूरत नहीं है, तपस्या करने का जरूरत नहीं है, इतना व्रत रखने का जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ आपको भगवान का धाम मिल जाएगा, वैकुंठ धाम। अरे कितना बड़े बात कहे नारद मुनि, मैं तो आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मगर देखिए मेरा अंदर आइए, घर के अंदर आइए, देखिए मेरा बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए इनको छोड़ के देखिए कितना अच्छा, इनका तो जन्यु संस्कार भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हमें समय दीजिए, तो मैं तो आना ही है, ये मृत्यु लोक में कोई सुख नहीं है। नारद मुनि देखते हैं ये तो वेदांत बहुत बढ़िया बोल रहा है, मगर आने के लिए अभी तैयार नहीं, कोई बात नहीं, करोड़ 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 जन्मों से यही काम कर रहा है, थोड़ा साल, थोड़े साल तो कुछ भी नहीं है, तो वेट करते हैं, कुछ दिनों के बाद आते हैं और आके देखते हैं, अरे तुम्हारा बेटा का तो सब कुछ संस्कार हो गया है, अब चलो निकलो। नारद मुनि, ये तो बहुत अच्छी बात है आप आ गए, मगर देखो मेरा पत्नी और मेरे माँ के बीच में ना थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और मेरे माँ को देखो बुढ़ी हो गई, आपको समझते हैं कुछ दिन में उसके बाद मैं आ जाता हूँ, मेरा पत्नी को कोई कष्ट देने वाला कोई नहीं होगा, मैं आ जाता हूँ, अरे थोड़ा दिन। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम कष्ट भोग रहे हो और देख रहे हो आपके माँ बूढ़ी हो गई है, देखिए आप दोनों के, मेरा पत्नी और मेरा माँ के बीच में थोड़ा सा थोड़ा दिन तो टाइम दो ना नारद मुनि, क्या नहीं समझ रहे। नारद मुनि बोलते हैं क्या करें, अपने मर्जी से ही आना है, तो कुछ दिन के बाद आए, कुछ दिन के बाद आके देखते हैं, नारद मुनि को देख लिया, प्रणाम कर लिया, आइए आइए नारद मुनि, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा टाइम पर आए, मेरा पोता का जन्म हुआ है, आपका माँ तो नहीं दिख रहे, माँ गुजर गई है, माँ गुजर गई, हाँ तो फिर पिछले बार क्या बोले थे, जब माँ तो गुजर जाएगी मैं आ जाता हूँ, चलो आप निकलो, ये बंधन में क्यों पड़ रहे हो। देखिए नारद मुनि, अभी 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 देखो छोटा सा मेरा पोता और मेरा पत्नी इतना उनके ऊपर मोह रखा है, थोड़ा दिन, अरे इसमें क्या है। फिर नारद मुनि चले गए, नारद मुनि चले गए, कुछ दिन के बाद फिर आए, हे तू ही हो वो जो ब्राह्मण, हाँ मैं ही हूँ, मुझे इतना रोग हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं ऐसे बन गया, अरे कितना मोटा था, समझ में आया जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या होता है, चलो निकलो मेरे साथ। हाँ मगर मैं तो आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मगर मेरा पत्नी, मैं नहीं रहा तो कैसे जिंदगी गुजारेगी, देखिए वो तो मैं नहीं रहा तो वो चल भी नहीं सकती मेरे साथ ही। अरे तुम और तुम्हारा पत्नी, बच्चे, पोता, नाता, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तुम जन्म जन्म कितने कितने करोड़ करोड़ जन्म लिए हो, जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, बीच में इतना कष्ट भोग रहे हो, वैकुंठ धाम आपको अभी मिल रहा है, चलो थोड़ा दिन देखो मैं पत्नी को थोड़ा मैं हेल्प कर सकूं। अब क्या करेंगे, उनका मर्जी से ही आना है। फिर आके देखते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, अरे भाई इधर एक मोटा सा ब्राह्मण था जो बिल्कुल पतला हो गया रोग होने के बाद, वो आदमी किधर है, अरे वो आदमी गुजर के 3-4 साल हो गया है। अच्छा 3-4 साल हो गए, चलो मैं देखता हूँ, वो तो सिग्नल मिल रहा है, वो तो इधर ही है। ओ ब्राह्मण अब क्या बने हो, तुम तो शरीर छोड़ के किधर गए हो, किधर गए हो, किधर गए हो, अरे 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 कुत्ता, इधर इधर कुत्ता, पहले कुत्ता ही है, ये दिख रहा ही नहीं, कुत्ता कुत्ता बन के आया। कुत्ता बन के आने के बाद ब्राह्मण, नारद मुनि मैं तो आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ ये बात अच्छा है, समझ में आ गया ना, ब्राह्मण थे कितना अच्छा काम कर रहे थे, अब देखो कुत्ता बन गए हो। नारद मुनि एक चीज है, ये देखो दरवाजा, खिड़की का दरवाजा कैसे खोल के गए मेरे बच्चे, अंदर सोना है, इसके अंदर कोई भी चोर आराम से घुस सकता है, ये मेरा बच्चों को और मेरा जो बहू है उसको अकल नहीं है, जब अकल आ जाता है ना मैं आता हूँ। अरे अभी तो कह रहा था मैं आ जाता हूँ, अभी कह रहे हैं अकल आने के बाद आता हूँ, और कुछ होने के बाद आता हूँ, फिर क्या करें। ठीक है कुछ दिन के बाद आया, देखते हैं कुत्ता गया, सिग्नल तो मिल रहा है, इधर ही है। ओ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था बाद में कुत्ता बना, वो आत्मा किधर हो अब, अब किधर हो, मैं इधर हूँ, इधर हूँ, बन गया काकरोच, बन गया काकरोच, बनने के बाद हाँ समझ में आ गया, भगवान की कृपा से तुम्हें इतना स्मरण हो रहा है, याद हो रहा है कि तुम पहले ब्राह्मण थे बाद में कुत्ता बने, बाद में देखो तुम्हारे जीवन क्या है ये। नारद मुनि कुछ मत बोलो, पिस्ता, काजू, मेरा बहू जो है ना गटर में डालती है और एक सड़ा हुआ डाल रहे होंगे, उसके पीछे क्यों पड़े हो? कितना स्वादिष्ट है, अगर मैं नहीं खाता हूं ना नारद में दूसरा कॉकरोच खा जाएंगे। जब तक मेरा बहू को अकल नहीं आती है तब तक मैं नहीं आऊंगा ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें? देखो नारद मुनि, आप समझने का प्रयास करो, अगर मैं वो स्वादिष्ट काजू नहीं खाता हूं तो दूसरा काकरोच खा जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे नारद मुनि देखते मुझे ही डांट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर क्या करेंगे, हाँ एक को मैं पकड़ा था, फिर आके देखते हैं सांप बन गया। समझ में आ गया ना, सांप तो बन गए हो, अब तो आ जाओ भगवान की सेवा करते करते वैकुंठ धाम में, बहुत आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूरा बाहर आ जाएंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। नारद मुनि फसल रेडी हो गया है, ये लोगों को दिमाग ही नहीं है, फसल इतना ऊपर सब कुछ रेडी हो गया है, चूहा आके काट के खा जा रहा है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं सांप बन के उसको चूहा को काट रहा हूँ, चूहा को खा जा रहा हूँ, चूहा को डरा रहा हूँ, भगा दे रहा हूँ, थोड़ा दिन रुक जाओ। अब नारद मुनि कहते हैं ये तो ऐसा ही फंसे रहेगा, इसको कोई बाहर निकालने का तरीका पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। वो चिल्लाते हैं सांप 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 चिल्लाए, उनका बेटा आया सांप को मार दिया। तो ये जो बंधन है इतना इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग है कि उससे निकल के बाहर आना बहुत बहुत मुश्किल है। और जब तक हम भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यय, भगवान बताते हैं ये माया जो है किसी का मत समझो, ये माया मेरा माया है, इट इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी, ये मेरे अंडर में डायरेक्टली है, ऐसा नहीं किसी का अंडर 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 नहीं, मेरे बहुत हाई लेवल पर है। तो जब तक मेरा शरणागत नहीं होते तब तक नहीं, इसलिए हमारा दो जो रास्ते हैं उसमें अगर हम अध्यात्म को लेना है तो भगवान का शरण में जाना। एक आ गया, हाँ जी मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, भगवान के शरण में चले जाऊंगा और मैं यही पद लूंगा, आध्यात्मिक सुख का खोज रहा हूँ। उनका गुरु बोलते हैं देखो उतना आसान काम नहीं है, थोड़ा संग में रहो, भक्तों के संग में रहो। नहीं नहीं मुझे कोई संग का जरूरत नहीं, वो मैं मुझे भौतिक सुख का जरूरत ही नहीं है। जब ये संग होता है ना, भक्तों का संग हो जो भी संग हो, ये भौतिक का बातें करते हैं, नहीं नहीं मैं अकेला अकेला जाता हूँ, मैं मुझे आध्यात्मिक सुख ही चाहिए। तो वो अपना बड़ा घर उसको ताला लगाया और निकल पड़ा जंगल, जंगल में बढ़िया भक्ति कर रहा है अकेला, मुझे कोई किसी का जरूरत नहीं। कितना अच्छा भक्ति हो रहा है। कुछ दिन के बाद उनके जब भक्ति कर रहा था, करते करते सो गया तो स्वप्न आया, उनका घर को पूरा चोर घेर लिया है और चोर अंदर जाके पता नहीं क्या क्या है, क्या सामान है पता नहीं, वो लेके जा रहे हैं। एकदम उठ गए, अरे मेरा घर में चोर, अरे इतना सारा चोर, मैं अभी जाता हूं। तो सब कुछ छोड़ दिया, घर आके देखते हैं हाँ ठीक है। ये है अगर भक्तों के संग में नहीं आते हैं तो ये मन इतना मोह में पड़ जाता है, बंधन में, उस बंधन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो भक्तों का अगर नहीं रहा संग, भक्ति जरूर होगी भंग। तो एक बार एक राजा दिखाते हैं, देखो हमारा बिल्ली, और बिल्ली के ऊपर दिया रखा है, दिया में ज्योति देखिए कैसा जल रहा है, ये मेरा बिल्ली हिलता भी नहीं है। इनको देख के सब लोग अच्छा तरीका से समझ लो कैसे पेशेंस आपके धीरज कैसे रखना है, इसको देख के समझो। तो ये राजा बार बार वो बिल्ली को बुलाते हैं हर दिन, बिल्ली को बुलाया, बिल्ली आता है, चलो ऊपर गया और उसके ऊपर रखा, ऊपर रखा तो वो हिलता भी नहीं। अब ये सब मंत्री परेशान हो गए, अरे बिल्ली को देख के सीखो, बिल्ली को देख, आज बिल्ली को देख के सीखो कह रहे हैं, कल बिल्ली को पूजा करो कहेंगे, अरे इससे कैसे बाहर आना। उनका ये साउथ का है तेनालीरामा लिंगा बोल के एक बहुत बुद्धिमान मंत्री श्री कृष्ण देवराय के आस्थान में, तो वो कहते हैं महाराज मैं एक छोटा सा टेस्ट लूं, ये बिल्ली कितना उसका ये कॉन्सेंट्रेट करता है, कितना इसका एकाग्रता है, कितना धीरज रखता है, कितना देर ऐसा ही बैठ सकता है, मैं थोड़ा सा उसको चेक करूं। महाराज बोलते अरे ये तो ऐसा बैठे रहता है, इसको देख के सब लोग सीखना चाहिए। अब महाराज मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ। महाराज बोलते हैं ठीक है चेक करो और सबको बताओ हमारा बिल्ली कितना बहुत बड़ा सन्यासी के जैसे बैठ जाता है और उसको कोई हिलाएगा नहीं। ये बाहर गया, बाहर जाके एक बैग, एक अपना थैली लेके आया, थैली के अंदर चूहा, चूहा को एकदम छोड़ दिया, चूहा का छोड़ा बस, वो दिया गया किसी का परवाह नहीं, चूहा के पीछे बाहर। महाराज देखते रहे, अरे मैं इतने दिनों से सोच रहा था ये बहुत बहुत बड़ा ना सन्यासी के जैसा है, सब लोग ये बिल्ली को देख के सीखना है, मैं कुछ दिनों में बिल्ली को वर्षिप, बिल्ली वर्षिप कर इंट्रोड्यूस करने वाला था, ये मारजाल को पूजा कैसे करना है, बिल्ली को कैसे पूजा करना है, इतना शक्तिमान है, एक मिनट में गायब हो गया। अरे ये जो ऊपर दिखाव करते हैं ये ऐसा ही होता है, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो वो चले जाते हैं। जब तक हम इंद्रियों का भोग नहीं छोड़ते हैं तब तक इस भौतिक जगत में पड़े ही रहेंगे, पड़े ही रहेंगे। जब तक हम इंद्रिय भोग का, हम सोचते भी नहीं कि हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं और ये जेल से बाहर निकलना है। एक बार एक राजा, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बढ़िया राजा, उनका जो भी काम है बहुत बढ़िया होता है, उनके पास आके महाराज देखिए आपके कारागार है ना, कारागार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सब कैदी बहुत दुखी हैं। तो महाराज बोलते हैं मैं अभी कारागार जाऊंगा, जाके उनका कष्ट का निवारण सूत्र मैं सबको बताऊंगा, जो भी वो मांग रहे हम देंगे, जेल में ये अनाउंसमेंट किया जाए। जेल में अनाउंसमेंट होता है, देखिए सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो, महाराज आ चुके हैं, सब लोग अपना अपना जो भी बोलना है ब्रीफ शॉर्ट संक्षिप्त में बताओ, अपना कष्ट अपना जो भी है महाराज उसका निवारण करेंगे। कैदी आ गया एक एक करके, महाराज देखो हमारा ताली कैसा है, कितने इसमें छेद है, जब दाल डालते हैं दाल तो आधा दाल नीचे ही चले जाता है। राजा देखते अरे हाँ ये तो बहुत गंभीर है, तो सबको नया थाली, बिल्कुल नया। सब कैदी बोलते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय। एक आदमी कहता है अरे तुम क्या मांग रहे हो, इससे क्या फायदा, हे चुप रहो, अच्छा अच्छी चीज मिल रहा है, तुम क्या फायदा, क्या फायदा बोलते हो। महाराज देखते हैं दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी आया, महाराज देखो कंबल, ये कंबल में इतना छेद है, ओढ़ते हैं तो बस आदमी के अंदर ही फंस जाता है। अच्छा सबके लिए नया कंबल, फिर वो चिल्लाता है अरे तुम क्या मांग रहे हो, इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, अरे चुप रहो, अच्छी अच्छी चीजें मिल रहा है, तुम्हें भी मिल रहा है, क्या फायदा, क्या फायदा। दूसरा आया, दूसरा आके बोलते महाराज देखो हमारा रूम, अरे ये कोई रहना लायक है, हम ऐसा इसमें हमारा जो कमरा है जेल का कमरा ऐसा है, अच्छा
अरे सब लोग लग जाओ, बढ़िया सा पेंट करो, अच्छा सा रिपेयर करो। अच्छा सा रिपेयर हो गया तो सब लोग कहते हैं महाराज की जय हो। तो एक एक करके सब लोग बता रहे हैं, महाराज देखो आधा रोटी, वो भी बहुत जगह पर जला होता है, और ये खाना सबके लिए अच्छा खाना। हर बार वो बोलते हैं तुम क्या मांग रहे हो, इससे क्या फायदा, देखो ये पानी जो पी रहे हैं ये कोई कूल ड्रिंक नहीं है, ये तो पानी है जो हम पीते हैं, इतना इसके अंदर मलिन है। तो आखिरी में एक एक करके आखिर में आ गया, बताओ इतने देर से मैं देख रहा था, इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा बोल रहे थे, अब बताओ तेरा बारी आ गया है। सब मिलके उसको लास्ट में कर दिए, लाइन में खड़े थे उसको लास्ट में कर दिए, आके बोलते हैं महाराज मुझे जेल से रिहा करो। महाराज तुरंत खुश हो जाते हैं। देखो इतने लोग हैं, कोई जेल से बाहर आने का सोच भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। तुम सबसे बुद्धिमान हो, इनको रिहा किया जाए। और सब लोग ज्ञान पूर्वक सुनो, हमने इतना सुविधा आपको दिया है, जो भी आपका काम है वो काम हो गया है डबल। अरे जो भी काम दे रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और रोज मार रहे हैं। और सब लोग सुनो, जो काम नहीं कर पाता है उसका दंड भी दुगुना हो जाएगा। अभी जो काम दे रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, रोज मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अब काम दुगुना हो गया। ये अच्छा कंबल, ये पूरा सुविधा लेके क्या करना है, ये सबसे बुद्धिमान है वो निकल गया, हम उसको पागल कहें। तो इस भौतिक जगत में हम ऐसा ही है, हम बाहर आने का सोच भी हमारे दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि हम माया से इतना प्रभाव, हम इंद्रिय तृप्ति में इतना लीन हो चुके हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति से बाहर आना हमें ठीक ही नहीं लगता। पृथु महाराज जब सनक सनातन चार कुमार जब उनके सभा में आते हैं, उनसे प्रार्थना करके यही प्रश्न पूछते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लीन हुआ इंसान को उद्धार करने का मार्ग क्या है, अति सुलभ मार्ग थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। फिर बताते हैं बहुत इजी मार्ग यही है, पाद पंकज पराशर विलास भक्तिया। तो ये जो है भगवान के भक्ति करने से, कृष्ण का भक्ति करने से ही, श्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम, भगवान वासुदेव कृष्ण के भजन करने से ही हम इससे बाहर आ सकते हैं। जो भी बड़े बड़े मुनि ऋषि वो लोग प्रयास करते हैं मगर वो बाहर नहीं आ पाते हैं, अगर वो भगवान के कृष्ण के शरण में नहीं आते हैं, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। केवल भगवान कृष्ण के भजन करें, स्लोली स्लोली हमारा बंधन छूट जाएगा और हम भगवान के सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि भागवतम में भी कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदाहितुकम। जनयत्य अशु, अशु अशु मींस, अशु का मतलब है बहुत जल्दी, शीघ्र, क्विकली, तुरंत। जैसे भगवान के सेवा में इंसान लग जाता है, उस इंसान को भगवान वैराग्य और ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वो वैराग्य को स्लोली स्लोली पाने से वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम जरूर पहुंच जाएगा। इसलिए प्रभुपाद हमें सूत्र दिया है, ये चक्कर से बाहर आने का एक ही मार्ग है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और चार नियमों को पालन करें। हम भगवान के सेवा में पूर्णतया जब लग जाते हैं, हम कठपुतली के जैसे, भगवान जैसा नचा रहे हम वैसा नाचेंगे।
अगर हम माया के प्रभाव में हैं, तो ये बंदर जब जैसे वो नचाता है हम नाचना पड़ेगा। जैसे अच्छा नाच रहा है ये बंदर वाला बोलता है और नाचो सब लोग अच्छा पैसे दे रहे हैं, अरे इतने देर नाच लिया अच्छा नाचो, नहीं नाचूंगा, मार पड़ेगा। अगर मैं नहीं नाचता हूं नाचूंगा ही नहीं मार पड़ेगा, नाचते मार खाना पड़ेगा, नहीं नाचा तो भी मार खाना पड़ेगा। ये है भौतिक का। अब ये कठपुतली नहीं नाच रहा है, कोई बोलते हैं कठपुतली क्यों नहीं नाच रहे हो, अरे कठपुतली वाला नहीं नचा रहा है, ये तो मैं क्या करूं, मैं तो कठपुतली हूं, वो नचाए तो मैं नाचता हूं, वो नहीं नचाए नहीं नाचता हूं, वो अच्छा नचाए वो नचा रहा है, मैं तो नहीं नाच रहा हूं वो नचा रहा है, अच्छा नाच रहा हूं, नहीं नाच रहा है ठीक नहीं नाच रहा है, वो जैसा नचाए वैसे, पूर्ण दया भगवान के ऊपर। अगर हम इसमें रहा ना हमें कोई ये पराभव ना कोई प्रशंसा, दोनों नहीं है, हमारा मन सदा भगवान के सेवा में, इधर सदा डर और दुख, तो ये हमारा मेन चीज यही है। आज के श्लोक में जैसे प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब तक हम भगवान के शरण नहीं लेते हैं, केवल जब हम भगवान के शरण लेते हैं तभी हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान का भक्त का लक्षण प्रकट होता है। और भगवान के शरण लेने के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों का शरण लेना जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस कान के मंदिरों का स्थापना किए हैं, जिसमें बहुत अच्छी तरीका से सब कुछ बताया जाता है और हमारे गुरुजन हमें मार्गदर्शन करते हैं, उनका आदर्श लेके हम अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जो है बहुत बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसको जितना भी हमारे पास बच गया है उसको हर मिनट भगवान के सेवा में समर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आपका कुछ प्रश्न रहा तो हम चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है हम इधर वाणी का विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद भागवतम महापुराणम की जय। जय श्री राधे श्याम। ठीक है प्रभु।